तिलक लगाना, तब तक आधा मंगल आरती हो जाती है। मतलब जो आप तिलक लगा रहे हो किसके लिए लगा रहे हो, भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन अब उसको छोड़कर आपको लग रहा है कि तिलक लगाना भक्ति है, फिर वो जानता नहीं कि क्या असली भक्ति है। रूप गोस्वामी आगे बताएंगे, जैसे जब भक्त को अवकाश मिल जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो ऐसे भयंकारी कार्यों को आसानी से छोड़कर वो भगवान के पास भाग कर आ जाता है। यह है भक्ति। इसीलिए आदि वास्तु ज्योतिष योग वैराग्य ये सब आदियों को पीछे रख देता है। अगर वो मदद कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्रभुपाद जी करते थे, लेट अस हैव अ फन, कॉल द एस्ट्रोलॉजर, थोड़ा मजाक करेंगे, बुला लो एस्ट्रोलॉजर को, देखते हो क्या कहता है। जब वो बीमार थे तब वो बुलाते थे उनको, फिर वो ज्योतिष आ जाता था, फिर वो देखता था ऐसा होगा वैसा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो जाने के बाद प्रभुपाद जी जो आप लोग अपने आप करना चाहते थे उसको ही करते थे, दवाई के साथ भी ऐसा ही करते थे प्रभुपाद जी। यानी कि वो कहते थे सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो शुद्ध भक्ति है उसमें कोई मिश्रण नहीं डालना है। यह है शुद्ध भक्ति का पूरा एक श्लोक में रूप गोस्वामी विवरण करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई इच्छा नहीं केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, और उस इच्छा में शीता, अगर आप किसी अवस्था में कृष्ण को पुकार भी देते हो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, वो कोई अशुद्ध नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, किसी भौतिक इच्छा से न होकर किसी ज्ञान अर्जन की इच्छा से न होकर अनावृतम अनुकूल लेना, अनुकूल भावना से जहां कृष्ण को प्रसन्न करने वाला और पूरक इच्छा से सेवा करना, अनुकूल लेना, अनुशीलनम हमेशा के लिए कार्यरत रहना मन से बुद्धि से और शब्दों से, इसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। और रूप गोस्वामी और कहते हैं कि मैं और एक शास्त्र से इसका वर्णन देता हूं, नारद पंचरात्र से वो और एक श्लोक कहते हैं, और वो है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। कि भक्ति का और एक डेफिनेशन देते हैं जो इसके लिए पूरक है, निर्मलम यानी कि बहुत शुद्ध, और किसकी सेवा, ओ कृष्ण की सेवा, इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा करना। प्रभुपाद जी लिखते जब तक उपाधियां है तब तक सेवा शुद्ध नहीं है। अगर ये भी उपाधियां रखेंगे, प्रभुपाद जी ने एक बार अपने जीबीसीओं को लेटर लिखा और कहने लगा अगर आप गलत करोगे, जिस प्रकार से यमराज भी जीबीसी थे, प्रभुपाद जी लिखने लगे, लेकिन वो जीवित ने मांडव्य मुनि के साथ में कुछ गलत जजमेंट दे दिया, इसलिए प्रभुपाद जी कहने लगे ओ यमराज जीवित को फिर शूद्र बनना पड़ा। तो वैसे अगर आप अपने उपाधियों को लेकर गलत उसका उपयोग करोगे तो क्या होगा, आपको फिर से यहां रहना होगा। तो सारे उपाधियों को छोड़कर, जैसे बताया जाता है कि जिस समय जब रामचंद्र जी से मिलने के बाद हनुमान जी सीता के पास आ गए अशोका वन में, और उस समय उन्होंने केवल रामाय नमः राम को प्रणाम किया, लेकिन उसी समय सीता रावण को प्रचार कर रही थी, लेकिन रावण के दिमाग में तो गया ही नहीं। लेकिन उस प्रचार को सुनकर हनुमान जी ने अपने प्रार्थनाओं को बदल दिया और ऐसे प्रार्थना करने के लिए मैं आपका किंकर हूं। इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कभी कभी हम भगवान को स्वीकार करते हैं, हाँ भगवान हो, लेकिन मेरा भी आइडेंटिटी है उसको अलग रखते हैं। जैसे नमस्कार, नमस्कार तो कर दिया, यानी कि मैं अलग हूं आप अलग हो, लेकिन जब हम कहेंगे कि मैं और कोई उपाधि नहीं है केवल आपका दास हो और भी श्रेष्ठ है, केवल कहना कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, इसका अर्थ हो गया कि आप अलग हो मैं अलग हूं, मेरा कुछ आइडेंटिटी है उपाधियां है, लेकिन जब हम भगवान के सामने आकर, यही सनातन गोस्वामी ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया क्या मी, तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या कहा, तुम्हारा उपाधि क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? जीवर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। जब तक लोग इसको जानेंगे नहीं तो फिर वो भगवान के सामने आ भी जाएंगे, लेकिन जब तक अपने उपाधियों को रखेंगे फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है कि मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपकी मैं सेवा करना चाहता हूं, यही उसकी उपाधि है। तो सारे उपाधियों को छोड़ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखे और उस बिलबोर्ड में लिखा था अनअलॉयड स्टील अवेलेबल, अनअलॉयड यानी कि उसमें कोई मिश्रण नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा हमारी भी प्रक्रिया वैसी है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? अनअलॉयड, इसमें कोई मिश्रण नहीं। अगर वो मिश्रण है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ए, हम देखते हैं प्रस्तावना में ये तीन विषय है, विषय सूची, ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, दूसरा नमस्कार अर्पण करना आशीर्वाद देना, और तीसरा भक्ति का विश्लेषण, शुद्ध भक्ति क्या है उसका विश्लेषण रूप गोस्वामी दे रहे। और दोपहर के समय हम भागवत से दो श्लोक देखेंगे जो रूप गोस्वामी देते हैं, और उसके बाद भक्ति करने से क्या छह कार्य होते हैं, छह गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है, प्रक्रिया करते ही कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। जैसे अगर कोई धूम्रपान करता है तो रिएक्शन क्या है, उसके जो ओट है वो काले पड़ जाते हैं, समझ में आ जाता है कौन धूम्रपान कर रहा है कि नहीं, वो बार बार कफ करने लगता है। यानी कि कुछ करने से तुरंत प्रक्रिया आनी चाहिए। अगर खाने से भूख नहीं मिट रही तो समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर शरीर पे नहीं लग रहा है खाना तो समझना चाहिए कि कुछ तो इसमें त्रुटि है। तो वैसे ही भक्ति करने से कुछ परिणाम होना चाहिए, और रूप गोस्वामी उस परिणामों का वर्णन करते हैं। वो परिणाम क्या है, वो क्लेशाग्नि, जितने क्लेश है वो नाश हो जाएगा। शुभदा, शुभधा, शुभदा यानी कि जो शुभ को प्रदान करने वाले, क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, और मुक्ति है उसको तुच्छ समझने वाली। कैवल्य निस्तारको यानी कि जो कैवल्य मुक्ति है उसको तुच्छ समझने वाली भक्ति। सुदुर्लभा, और भक्ति बहुत विरल है, ये जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति कोई साधारण नहीं है और भक्ति बहुत ही विरल है, रूप गोस्वामी कहते हैं। संद्रानंद विशेषात्मा, संद्रानंद विशेषात्मा मतलब ऐसा घना आनंद प्रदान करने वाला, कोई मिश्रण है, दुखों का मिश्रण है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत इस भौतिक जगत में क्या है, प्योर मिक्स, प्योर मिजरी एंड मिक्स्ड हैप्पीनेस। देखो सुंदर प्रभुपाद जी कहते कि पूरा दुख है एंड मिक्स्ड हैप्पीनेस, यानी कि अगर आप कुछ सुख प्राप्त करो और सुख के साथ में दुख के बहुत सारे बी आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा। इसलिए मिक्स्ड मिजरी, मिक्स्ड हैप्पीनेस एंड प्योर मिजरी, शुद्ध मिजरी दुख और मिश्रण वाला सुख। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। संद्रानंद विशेषात्मा, जैसे कि मेटल होता है, थिक मेटल, उसके बीच में से आप कुछ निकाल नहीं सकते हो, क्यों, उसके जो मॉलिक्यूलर्स है इतने नजदीक बैठे रहते हैं, वैसे ही भक्ति है। संद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णानि चकर्षणीच, जो कृष्ण को आकर्षित करने वाली, और ये छह गुणों को जानने से हमारी जो भक्ति का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जानकारी है, बहुत ही डीप बन सकता है। और इसके लिए रूप गोस्वामी काफी वर्णन करते हैं, और खास करके क्लेशाग्नि के बारे में। हो सके कि हम आज, कल, और परसों केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे, और बाद में जब अगले महीने में फिर आगे के जो अध्याय है उसकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। 5 मिनट के लिए किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न है, जो कुछ भी हम करते भक्ति की प्रक्रिया हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, इसलिए भक्ति के पहले जब हम आए थे यहाँ किस कारण के लिए आए थे? अलग अलग हेतु से आए थे। शांति नहीं है, अशांत हूँ, त्रस्त हूँ, यानी कि मुझे कुछ था इसलिए मैं आ गया। तो हेतु क्या था? अलग हेतु था। लेकिन धीरे 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 जब हम भक्ति की प्रक्रिया में लग जाते हैं तो हेतु को बदलता रहना चाहिए। भक्ति की प्रक्रिया कर रहा हूं लेकिन किस हेतु से आया था मैं? जैसे कि अमेरिका में एक भक्त थे, वो काफी साल के बाद उन्होंने अपनी सही कहानी सुनाई। वो एक ड्रग ट्रैफिक करते, ड्रग डील करते थे, वो मादक द्रव्यों को बेचते थे, और एक बार उन्होंने देखा कि उनके घर पर पुलिस पूरा घेरा डाल दिया पकड़ने के लिए। उन्होंने देखा अभी तो मैं बच नहीं सकता हूं। अपने मित्र के पास गए, वहां भी उन्होंने देखा कि उधर भी पुलिस आकर खड़े है। समझ गया कि अभी मैं बच नहीं सकता हूं, तो चलो हरे कृष्ण मंदिर में ज्वाइन हो जाते। वो आ गया। किस हेतु से आया? अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए। और प्रेसिडेंट से कहा, देखो मुझे कुछ भी सेवा दो, अहितु किया प्रतिहता, मैं कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मंदिर के बाहर मत भेजो, अंदर बाथरूम में किचन में कहां भी सेवा दो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भक्त बोले, वह इतना नम्र है, कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों को संभाल के देखना चाहिए। तो उनको सेवा दिया उन्होंने, मंदिर के प्रेसिडेंट ने खूब सेवा दिया। 1 साल तक सुनते रहे भक्ति के बारे में। पहला हेतु क्या था? कि मुझे पुलिस से बचना है। लेकिन धीरे धीरे सुनते 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 समझ गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं केवल बचने के लिए आया था, लेकिन अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचने के लिए आया हूं। फिर आगे गया कि मैं केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए आया हूं। फिर एक दिन वो प्रेसिडेंट से कहने लगे, मुझे आपसे कुछ कॉन्फिडेंस में बात करना है। प्रेसिडेंट अपने कैबिन में लेके, क्या हो गया, आश्रम बदल रहे हो क्या? तो फिर वो कहने लगा कि मैं आपसे यही चर्चा करना चाहता हूं कि मैं पहले क्या था। मैं तो एक ड्रग ट्रैफिकर था, मैं मादक द्रव्यों को बेचता था, मेरे पीछे पुलिस पड़े थे। तो प्रेसिडेंट सुनते ही घबरा गया, इसके ऊपर तो बहुत सारे केस होंगे, अभी भी पुलिस उसके खोज में रहेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है फिर आप चले जाओ, जाकर पुलिस को बताओ आप ऐसा करते थे, अभी बदल गए। वो सब कुछ सुनने के लिए तैयार था। फिर प्रेसिडेंट के से लेकर वो किसी पुलिस स्टेशन चला गया, उधर ने सारी अपनी कहानी सुनाई। तो पुलिस लोग बड़े चकरा गए, उन्होंने कहा ठीक है आपको तो कम से कम पनिशमेंट हो जाएगा। तो फिर जज ने उनको पनिशमेंट दिया कि आपको 3 महीने के लिए जेल में रहना होगा, क्योंकि देखा कि आप अभी बदल गए हो। तो उन्होंने पूछा, ठीक है आप मॉन्क बन गए हो, क्योंकि वो मॉन्क के ड्रेस में थे, मतलब आप करते क्या उधर? वो कहने लगा, मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, और किसी प्रकार का मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, शराब नहीं लेता हूँ। तो क्योंकि वो जज थे, लेकिन फिर भी वो वहां के जज थे, यहाँ के वहां के, वो तो सब प्रकार के पाप वृत्ति में लगे थे। उन्होंने कहा, ये तो प्रिजन सेल से बहुत खराब है जो आप कर रहे हो, ये तो जेल में जाने से बेकार है, उधर ही चले जाओ आप, इस वही आपके लिए अच्छा पनिशमेंट है। क्योंकि उसको नहीं समझा कि इसमें वो आनंद ले रहा है, उसको लगा तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है, मैं इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो यही है कि हम नियमित रूप से देखना है कि मेरा हेतु क्या है, किसके लिए मैं कर रहा हूं, उसको बदलने के लिए प्रयास करते रहना। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति कैसी करनी है? कृष्ण भावना में। हो सकता है कि मैं अलग भावना में भगवान की सेवा कर रहा हूं। सेवा तो हमें शुद्ध कर देगी, लेकिन जितना हम हमारे हेतुओं को बदलते रहेंगे, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। और जब इस संघर्ष को हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे भक्तों के संग में, भक्तों के मार्गदर्शन में अपनी जो हेतु है वो धीरे धीरे बदलती जाएगी, वैसे ही भक्ति हमारी शुद्ध बनती जाएगी। आपको वैसा स्वतंत्र दिया गया कि आप यही सेवा करते रहो, आप करते रहो, लेकिन अगर आपके जो अधिकृत अथॉरिटी है, आपके गुरु या साधु शास्त्र कहता नहीं अभी आपको ये करना है, तो फिर उसके प्रति आसक्त रखना फिर वो भौतिक बन जाता है। चेंज होने के लिए तैयार होना चाहिए। जनाने उस प्रभु से किसी ने प्रश्न किया था कि आप इतने साल से पुजारी सेवा कर रहे हो, वो कहने लगे ये तो करना है क्योंकि मुझे बताया गया, अगर बदलने के लिए कह दिया तो तैयार होना चाहिए। तो उनके भाई पंकज अंग्रे प्रभु वो कहने लगे कि पुजारी सर्विस इज माई ड्यूटी एंड आई लव प्रीचिंग। इसमें हमें समझ सकता है कि उनको प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके अथॉरिटी ने क्या आपकी सेवा, आप भगवान की सेवा करो, तो मैं उसको ड्यूटी ड्यूटी के रूप में स्वीकार करता हूं। क्यों? धीरे धीरे मेरी प्रगति हो जाएगी, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगता है? प्रचार करना। तो इन दोनों का समिश्रण करना कि मुझे अच्छा लगता है ठीक है वो करो, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि यही आपको करना है तो वही करना हमारे भक्ति के लिए पूरक है। भक्ति में तपस्या करना कितना जरूरी है, क्योंकि अधिक तपस्या या कम तपस्या भी भक्ति के पतन का कारण हो सकता है। इसलिए युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट सुकर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण गीता में कहते हैं सब कुछ युक्त होना चाहिए, इसलिए ये आएगा आगे हम पढ़ेंगे युक्त वैराग्य, इसके बारे में रूप गोस्वामी, ये तो आगे का विषय है, कैसा वैराग्य स्वीकार करना चाहिए, कैसी तपस्या करनी चाहिए, इसके बारे में रूप गोस्वामी आगे बताएंगे, तो इसकी चर्चा हम आगे के वर्गों में करेंगे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की, भक्ति रसामृत सिंधु की, श्याम
ओ भगवते वासुदेवाय,
ओ भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओ भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कूजत कोकिल हंस सारस गण किरणे मयूर कुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्णम अहर्निशं प्रभजतो जीवार्त दोयो मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ।
मी आदरपूर्वक सहा गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी आणि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी यांना वंदन करतो। हे गोस्वामी, सदैव दिव्य वृंदावन धामामध्ये श्री श्री राधा कृष्णांची भक्ती करण्यात मग्न आहेत। या वृंदावन धामात सुंदर फळ फुलाने युक्त अनेक वृक्ष आहेत, त्यांच्या मुळाशी अतिशय मौल्यवान रत्ने विखुरलेली आहेत। बद्ध जीवाना जीवनाचे परमोच्च ध्येय प्राप्त करून देण्यासाठी हे पूर्णपणे समर्थ आहेत।
ओम अज्ञान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे।
रूप गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षणों का, जैसे हमने देखा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। रूप गोस्वामी तीसरे स्कंद से जहां माता देवहूति को कपिल मुनि शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं और उसमें वो समझाते हैं कैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, लक्षणम ही भक्ति योग, कि भक्तियों का लक्षण क्या है, निर्गुणस्य उदारितम अहितुकी अव्यवहितम यो भक्ति पुरुषोत्तम है, कि भगवान की जो भक्ति होती है अहितुकी, अहितुकी यानी कि कोई कारण नहीं है। कोई प्रश्न करता है भक्ति क्यों करते हो आप, हम बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन यहां रूप गोस्वामी कह रहे भक्ति शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जैसे अगर हम देखते हैं इस भौतिक जगत में कोई किसी से प्रेम करता है, खास करके जो पुरुष और स्त्री का संबंध, उसके लिए कोई कारण नहीं होता। जैसे रूप गोस्वामी इसका उदाहरण भी देते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। ओके, भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे एक तरुण तरुणी से आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, तो वैसे ही शुद्ध भक्ति में वो तो परवर्टेड है, विकृत स्वरूप है वो प्रेम, तो वैसे ही भगवान के साथ में जो प्रेम होता है, भगवान के प्रति जब भक्ति की जाती है, उसके लिए कोई कारण नहीं होता। अगर उसमें कोई कारण है और वो कारण स्थाई नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो लोग भक्ति छोड़ देते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे घर में बहुत समस्या थी, इसलिए भी मैं भक्ति में आ गया, अभी बहुत शांति है, लेकिन आगे जाकर पहले से ज्यादा समस्या हो जाएगी, वो छोड़ देंगे। क्यों? किस कारण के लिए वो भगवान के पास आए थे। यहां इसलिए रूप गोस्वामी कपिल मुनि कहते अहितुकी, कोई कारण नहीं, केवल कृष्ण से प्रेम करना है, केवल उनके प्रति आकर्षण हो गया है। ऐसे जो ब्रिटिश साम्राज्य के एक राजकुमार थे, अभी भी उनका ऐसा चलता है कम से कम बाहर के दृष्टि से, कि अगर उनको विवाह करना हो केवल वो राजकुल के ही स्त्री से विवाह कर सकेंगे, किसी भी स्त्री से साथ उनका विवाह नहीं होगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसको पूरा जो राज्य का जो जितना भी उसकी आस्ती है, प्रॉपर्टी है, उसको प्राप्त नहीं होगा, उसका जो राज पदवी है वो छीन लिया जाएगा। तो ब्रिटिश का एक राजकुमार था, उसका किसी के प्रति प्रेम हो गया जो राजकुमारी नहीं थी, तो उसके माता पिता उसको कह रहे थे देखो अगर आप करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कारण दे रहे थे, लेकिन प्रेम के लिए कोई कारण नहीं होता है। उसने सब त्याग करके उसी के साथ में शादी किया। तो वैसे बिना कोई कारण से अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसको कहा जाता है शुद्ध भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी भी कहते हैं, उल्लेख कर रहे हैं, और कपिल मुनि कह रहे हैं कोई कारण नहीं है। सितंबर 11 तारीख के दिन जब वो टेररिस्ट लोगों ने बॉम्ब फेंका, तो उसके पहले कई लोग भगवान के प्रति विश्वास रखते थे, लेकिन बॉम्ब गिरते ही कई लोगों का विश्वास घट गया, और कई लोग जिनका विश्वास नहीं था वो विश्वास रखने लगे, बहुत शिफ्ट हो गया। जैसे लोग यहां जो पार्टी को फेंकते हैं और दूसरे पार्टी को लाते, वैसे कई लोग ने स्वीकार किया और कई लोग ने छोड़ दिया। ये ऐसा नहीं है, आगे रूप गोस्वामी कहेंगे अहितु की, कुछ भी हो जाए कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति नाश नहीं होगा। अगर इस भौतिक जगत में संभव है, जो विकृत स्वरूप है उस प्रेम का, तो शुद्ध भक्त में कितना हो सकता है। कुछ भी हो जाए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए इसके पहले वाले श्लोक में कपिल मुनि कहते हैं जैसे गंगा का पानी होती है, आप कितने ही उसके सामने अगर कुछ कठिनाई निर्माण करो, हिमालय में चले जाओ, कभी कभी पर्वत गिर जाता है लेकिन वो पर्वत के ऊपर से चले जाती है, कभी कभी नीचे से चले जाती है, और पूरा जो पानी है ठंडी के मौसम में वो बर्फ बन जाता है लेकिन नीचे से वो बहती रहती है। तो ऐसे ही वो कपिल मुनि कह रहे हैं, जिस प्रकार से गंगा का पानी समुद्र की ओर बहता रहता है वैसे ही भक्ति होनी चाहिए। उसको कहा जाता है अहितुकी, कोई भी कारण आ जाए लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो सेवा है वो चालू रहेगा। और यहां और एक शब्द का उपयोग किया गया है, अव्यवहित। अव्यवहित यानी कि कभी कभी लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान है, भक्त है, और बीच में कुछ इच्छा है, यानी कि मेरी इच्छा है और भगवान है, अगर वो मेरी इच्छा पूरा करेंगे तो ही मैं उनकी सेवा करूंगा। भगवान के पास सेवा करने के लिए नहीं जाते बल्कि भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। अगर भगवान देंगे तो फिर भगवान, नहीं तो फिर दूसरे के पास भी चले जाओ। इसलिए श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग देवी देवताओं के पास इसीलिए चले जाते, कुछ मांग लो, एक बार मांग उनकी पूरी हो गई फिर भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो यहां कपिल मुनि कहते अव्यवहित। अव्यवहित यानी कि और पृथक कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण की इच्छा और भक्त की इच्छा एक हो जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक कोई ऐसा ही साधारण वैष्णव ग्रंथ नहीं है लेकिन ऐसा एक ग्रंथ है, उसमें एक कृष्ण शब्द का वर्णन दिया गया है। कृष्ण यानी कि जो सबको अपने प्रति आकर्षित करते है, न यानी कि जो अपने भक्तों के प्रेम के दास बन जाते हैं, यानी कि कृष्ण शब्द में ऐसा अर्थ है जो अपने भक्तों के वो दास बन जाते हैं। तो यहां कपिल मुनि कह रहे दोनों की इच्छा एक हो जाती है, सेवा, कृष्ण भक्त की सेवा कर रहा है और भक्त कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण के हृदय में भक्त है और भक्त के हृदय में कृष्ण है, यह है शुद्ध भक्ति। तो ये एक विश्लेषण कपिल मुनि देते हैं। और आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है, अभी तो उनको भक्ति का विश्लेषण देना है लेकिन भक्ति का विश्लेषण देने के बदले में वो भक्त के बारे में बता रहे। सालोक सृष्टि सामिप्य सारूप्य ऐकत्व अपि उत दीयमानम न ग्रहन्ति विना मत सेवनम जनाहा। तो कपिल मुनि भक्त का स्तुति करते हैं, वो कहते कि भक्त ऐसे है अगर आप उनको वैकुंठ लोग भी दे दो, यहां तो लोग गंधर्व लोग जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन यहां भगवान कपिल मुनि स्वयं कह रहे कि मेरे भक्त को अगर आप इन सारे मुक्तियों को प्रदान करो, भगवान के धाम में उनके साथ में रहना, सामीप्य सालोक्य उनके लोक को प्राप्त करना, सारष्टि सारा जो वैभव है वैकुंठ लोक का उसकी आपको प्राप्ति हो सकती है, सारिप्य वैसा ही आपको दिव्य शरीर प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहां वो भक्त रूप गोस्वामी इसीलिए दिखा रहे हैं, भक्त के गुण में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, भक्त के गुण को देख के ही हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है, इसलिए भक्त के गुण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा जो भक्त है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो बिना मत सेवनम जना, भगवान स्वयं बोल रहे कि मेरे भक्त अगर सेवा न हो वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। और रूप गोस्वामी आगे कहते हैं ऐसी जो भक्ति है वो क्या करती है, तीन गुणों का जो प्रभाव है उसको नाश कर देती है। गीता में हम देखते हैं चौदहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीन गुणों के बारे में वर्णन किया और तीन गुणों का बताया कि कैसे इसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतन ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जिन्होंने भक्ति की है भगवान के प्रति वो आसानी से तीन गुणों का जो प्रभाव है उससे वो मुक्त हो सकता है। तो इसलिए जो तीन गुण है इनका प्रभाव इतना महत्व इतना शक्तिशाली होता है कि केवल भक्ति करने से उसे मुक्ति मिलेगी और इसलिए शुद्ध भक्त शुद्ध रह सकता है। अगर गुणों का प्रभाव हो तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ऐसा जो शुद्ध भक्त है, रूप गोस्वामी एक उदाहरण दिया जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, अहितुकी, अप्रतिहता और अव्यवाहित, जो बिना किसी कारण के अन्य कोई इच्छा न होने के साथ वो कृष्ण की सेवा करते रहेंगे। और ये कारण सुनोगे तो हम जान सकते हैं कि भक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अप्रतिहता, यानी कि उसमें किसी भी हालत में रुकावट नहीं। अगर किसी भक्त को भगवान कहते कि देखो आप कभी भी मुझे प्राप्त नहीं करोगे, अचिंत्य काल तक शाश्वत रूप से आप मुझे कभी प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए भक्ति छोड़ दो, भगवान स्वयं बोल रहे, जब भगवान सर्टिफिकेट दे रहे कि आपको मेरी भक्ति नहीं मिलेगी, आप मुझे कभी भी प्राप्त नहीं करोगे, टाइम वेस्ट मत करो, दूसरा कुछ करो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते फिर भी वो भक्त वो क्या करेगा, वो कृष्ण की सेवा में संलग्न होगा। वो कहते कि इसका अर्थ है अव्यवाहिता, अप्रतिहता, अहितुकी। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, इसलिए हमको जानना चाहिए, कम से कम जानना चाहिए, पालन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम इसको जानना चाहिए। जानने से क्या होगा कि जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है हम भगवान को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि सोचेंगे मैं इतना उच्च नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसी जो भक्ति है वो प्राप्त करने के लिए योग्यता नहीं है। तो रूप गोस्वामी ये तीन श्लोक भागवत के वर्णन करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं, जो बहुत चर्चा की बात है। बाहर के लोग भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, भक्त लोग भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, और कभी कभी उनकी चर्चा इतना तक चला जाता है कि उनको लगता है भगवान स्वयं भी कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। एक तो भक्त तो बंधे हुए ही है उनका ऐसा कहना, लेकिन जब भगवान भी स्वयं आते हैं वो भी कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति के जो परिणाम है उसका वर्णन करते हैं। हम जब कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं, हम सुबह चर्चा कर रहे थे, उसके परिणाम आते हैं और उसका हम अनुभव कर सकते हैं। भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र च, एक साथ में उसका अनुभव हो जाता है। वो क्या है, जैसे कृष्ण भक्ति में लग जाता है कोई तो उसके छह परिणाम है, और ये जो छह परिणाम है वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से परिणाम करते हैं। एक है क्लेशाग्नि, क्लेश यानी कि दुख, तो भक्ति क्लेश को हरण कर देती है। और दूसरा है शुभधा, शुभधा यानी कि पूर्ण मंगलमय बन जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं ये दो चीजें हैं, वो साधना भक्ति के द्वारा ये दो चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्लेश को हरण कर सकते हैं और मंगल को प्राप्त कर सकते हैं साधारण साधना भक्ति से। पहले वो हमको साफ कर देते, कभी कभी लोग कहते हैं अभी तो हम भक्ति नहीं कर रहे, साधना भक्ति से क्या मिलेगा, रागानुग भक्ति करनी है, लेकिन नहीं, ये दो कार्य है, परिणाम है, साधना भक्ति से हो जाता है। फिर दूसरे दो सुदुर्लभ और मोक्ष लघुता कृत, जो भक्ति हम जानते हैं कि इतनी विरल है, क्योंकि हम अभी उसको जानते नहीं कि भक्ति इतनी विरल है, इसलिए अन्य चीजों को भी ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भाव भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे, भगवान के प्रति जो प्रेम का अंकुर है उसको भाव भक्ति कहा जाता है, उस स्तर पर मोक्ष अगर प्रदान भी करे, अगर आज हमको विष्णु आ जाएंगे वैकुंठ देने के लिए, वो बोले अब तो छोड़ दो वैकुंठ, स्वर्ग भी बहुत है, हम कहेंगे स्वर्ग भी बहुत है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास चले गए और कहने लगे देखो बहुत सारे लोग आपके पास आना चाहते हैं, उनको लेते क्यों नहीं। विष्णु ने कहा आपको छोड़ के कोई भी नहीं आना चाहता है। नहीं नहीं बहुत लोग आना चाहता है, प्रचारक हमेशा उसको लगता है कि आज ही शुद्ध भक्त बनाना है और आज ही उसको गोलोक लेके जाना है, तो नारद मुनि की परंपरा है। हा? तो नारद मुनि कह लगे नहीं नहीं बहुत लोग आपके पास आना चाहते है। तो नारद मुनि को विष्णु ने कहा ठीक है आप चले जाओ और कहो देना कि स्पेशल डिस्काउंट है गोलोक जाने के लिए, वैकुंठ आने के लिए, जिसके अंदर योग्यता भी नहीं है केवल नारद मुनि के पीछे आने से वो प्राप्त करेंगे। तो नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता से नीचे आते हैं उनको ले जाने के लिए, तो कई लोग उनके पीछे आते हैं और कई लोग आते नहीं है, उनको आघात हो जाता है कि मैं वैकुंठ के लिए बुला रहा हूं, वो कहते हैं हमको बिजी है टाइम नहीं है। और जो त्रस्त थे वो लोग आने लगते हैं उनके पीछे पीछे। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब साधक जब परिपूर्णत्व को प्राप्त करता है उसको सारे कवरिंग जितने भी आवरण है उसको पार करना होगा, और उस आवरण में स्वर्गलोक चंद्रलोक अलग अलग लोक है उसको पार करना होगा। तो भगवान विष्णु ने ऐसा ही बनाया कि सबको वो पार करना पड़ा, और जब कई लोग स्वर्ग में आगे उधर ही रुक गए आगे चले ही नहीं, तो जब नारद मुनि वैकुंठ जाकर देखा उन्होंने कहा भगवान देखो कितने लोगों को लाया मैंने, पीछे मुड़कर देखा कोई भी नहीं अलावा वो अकेले। तो इसलिए ये जो है मुक्ति को तुच्छ समझना ये साधना भक्ति में नहीं होगा, ये केवल भाव भक्ति में हो सकता है। हाँ मुक्ति को तुच्छ समझना और सुदुर्लभ, इसका जो सुदुर्लभता को जानना भी वो केवल भाव भक्ति का लक्षण है। और बाकी के जो दो गुण हैं भक्ति के वो है संद्रानंदा विशेष आत्मा कृष्ण आकर्षण इसच। संद्रानंद यानी कि वो स्थाई जो हमेशा के लिए जो आनंद की प्राप्ति होती है। अब हमारी भक्ति क्या होती है घन तरल, कभी गुरुवार के प्रोग्राम में आ गए अच्छा लगा और कभी गुरुवार नहीं आया जब भी अच्छा नहीं लगा, घन और तरल। कभी कभी डिटरमाइंड होते दृढ़ होते हैं और कभी कभी पानी के समान जब फ्रिज से अगर आइस निकाल दो वो पिघल जाता है, ऐसी हमारी दृढ़ता होती है। इसलिए कभी हम आनंद करते हैं आनंद प्राप्त करते हैं और कभी उतना सुख नहीं मिलता भक्ति में। लेकिन यहां रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम भक्ति के स्तर पर संद्रानंदा विशेष आत्मा इतना उनको सुख की प्राप्ति होती है। प्रहलाद महाराज कभी लोग पूछते हैं कि भगवान के भक्त होकर भी उनको इतना दुख क्यों दे रहे थे भगवान, तो एक आचार्य कहते हैं कि उस दुख झेलने में उनको इतना आनंद लग रहा था। क्यों? क्योंकि दुख झेलने में उनको कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ रहा था। नहीं तो कुंती जैसी जो स्त्री है उसको बाकी लोग पागल कहेंगे, क्यों? वो कह रहे हैं विपद संतु तो शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् आपुनर्भव दर्शनम, कि मुझे दुख देते जाओ। ऐसा कौन प्रार्थना कर सकता है जिसके अंदर प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो गया है। संद्रानंदा उस अवस्था में कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है इतना गाढ़ा है वो कभी नाश नहीं होगा, वो प्रेम भक्ति के स्तर पर। और कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करना, अभी कृष्ण केवल परमात्मा के रूप में विराजमान है, कृष्ण के रूप में नहीं है। इसलिए जब लोग ध्यान करते हैं जैसे दिवामर प्रभु हाल ही में कह रहे थे, लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, खास करके बड़े बड़े मंदिरों में तिरुपति जगन्नाथ मंदिर में आपको भगवान का दर्शन आधा मिनट से कम करने को मिलेगा। और लोग जब भगवान के पास जाते तब आंखें बंद कर देते हैं, दर्शन करो प्रेम से उनके चरणों को देखो, उनके मुख कमलों को देखो, उनके नाभियों को देखो, उस समय जो आधा मिनट से कम रहते हो अगर आंखें बंद कर दोगे तो क्या देखोगे आप, तो देख नहीं पाओगे। क्यों? आपको बहुत विरला भगवान का दर्शन मिलता है। हृदय में तो भगवान नहीं है परमात्मा है, लेकिन वो भी हमारे सारे अनर्थों के कारण हमने उनको ढक दिया है, वो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। तो इसलिए ऐसी अवस्था में भगवान को यहां देखना संभव नहीं है और कृष्ण को अपने हृदय में आकर्षित करना ये बहुत ही मुश्किल है। ये केवल प्रेम भक्ति कर सकता है। जैसे बेलव मंगल ठाकुर जब भगवान वो अंधे हो गए थे, उनको हाथ पकड़कर ले जा रहे थे, उनको रास्ता दिखा रहे थे, तो अचानक कृष्ण निकल गए उनके हाथ से। तो फिर वो कहते कि आपने हाथ तो छोड़ के चले गए लेकिन इधर तो बंदी बना दिया हमने आपको, हमारे हृदय के गह्वर में आपको बंदी बना दिया, अब वहां से कहां भागोगे। प्रेम भक्त जो होते हैं, एक गोपी एक बार ध्यान कर रही थी, उन्होंने अष्टांग योग को स्वीकार कर दिया ब्रज में, तो नारद मुनि आ गए उधर देखने के लिए। नारद मुनि बड़े अचंभे रह गए, वो सोचने लगे ब्रज में अष्टांग योग कहां से चलने लगा अभी। तो फिर वो गोपी को जाकर पूछते आप क्या कर रही हो, वो कहते कि मैं ध्यान लगा रहे हूं। किसका ध्यान लगा रहे हो? कि लोग ध्यान लगाते परमात्मा के ऊपर, आप किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हो? वो कहने लगे मैं ध्यान लगा रहे हूं इधर बैठे हुए कृष्ण को निकालना चाहती हूं। लो क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि वो इधर बैठने के कारण मैं घर के जो काम है उसको नहीं कर सकती हूं। जब दूध निकालना होता है गाय का, वो बर्तन में निकालने के बदले में मैं बर्तन को उल्टा रख देती हूं। और जब पानी कुएं से निकालना है, वो जो मटका होता है उसके बदले में मेरे बच्चों को रस्सी लगाकर नीचे कुएं में लगा देती हूं। तो इसके कारण इतना घर में उत्पात चल रहा है, इसलिए अगर कृष्ण निकल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम कृष्ण को आने के लिए प्रयास करें और निकालने के लिए प्रयास करें, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है जो कृष्ण को आकर्षण वो कर सकते हैं। तो हमें केवल साधना भक्ति का जो परिणाम है उसको जानना है बस, क्योंकि अभी साधना में ही हमें बहुत कठिनाई आती है। लेकिन उस साधना स्तर पर भी अगर हम जान जाते कि कितना सारा फायदा है, क्लेशाग्नि, इसलिए जो संसार प्रेयर ऐसे प्रारंभ होता है, संसार दावा ननलीड लोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम, कि जो पूरा संसार है क्लेश के अग्नि से भरा हुआ है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बहुत कठिन है। और इसलिए रूप गोस्वामी आगे कहते हैं तीन प्रकार के क्लेश होते हैं, वो क्या है? एक है पाप वृत्ति, पाप कार्य हमेशा करते रहना। अर्जुन भी प्रश्न करते हैं भगवान से, अतक्यनो प्रयोत्यम पापम चरति पुरुष अनिश्चन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताय। ये प्रश्न है जो अर्जुन कर रहे कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं फिर भी क्यों कर रहा हूं। तो पाप वृत्ति एक है, दूसरा है पाप के बीज यानी कि भौतिक इच्छाएं, और तीसरा है वो अज्ञान। इन तीन कारण है जिससे कि व्यक्ति हमेशा दुख झेलता रहता है। क्या है? पाप करने की वृत्ति और भौतिक इच्छाएं और तीसरा अज्ञान। ये तीन कारण होते हैं जिसके कारण हमेशा जीव दुखी रहता है। और उसमें पाप वृत्ति, जब हम पाप करते हैं उसके तुरंत दो परिणाम आ जाते हैं। ये देखिए, जब जीव जब भी अज्ञान में होता है उसको समझ में नहीं आता, अज्ञान के कारण वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। जैसे मृगारी को नारद मुनि ने कहा इनको आधा मत मारो पूरा मार दो, वो पूछता है आधा और पूरे मारने में क्या अंतर है, यानी कि उसको ये भी जानकारी नहीं कि मैं मार रहा हूं इतनी हिंसा कर रहा हूं, कोई जानकारी नहीं। तो पूछा कि इसमें अंतर क्या है, मुझे अज्ञान के कारण हम भूल जाते कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, कलकत्ता के एक गली से वो जा रहे थे, उन्होंने एक कसाई खाना देखा बाहर से, और एक कसाई बाहर कई हेन को क्या कहते,
मुर्गी
इनको पूछना ठीक है, तो जो मुर्गी है वो उनको काट रहा था। आधा काट रहा था ऐसा धीरे धीरे, जैसे कि कोई टेलर कपड़ा काटता है ना, ऐसा धीरे धीरे काट रहा था। और वो देख रहा था कि वो मुर्गी इतना त्रस्त हो रही है, उससे खून निकल रहा है, चिल्ला रही है, और वो हंस रहा है जोर जोर से, और उसका बच्चा रो रहा था, और बाप उसको मारता है, रोता क्यों है, इसमें मजा ले ले। यानी कि अज्ञान के कारण व्यक्ति भूल जाता है कि मैं असली में इतना दुख झेल रहा हूं। इसलिए पाप वृत्ति है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि दो प्रकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। एक है प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी कि जो हम अभी भोग रहे हैं और उसको भोगेंगे, पाप के कार्य के जो परिणाम है उसको अभी भोगने वाले हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और दूसरा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध यानी कि क्या, मैंने कुछ पाप किया, वो जो पाप का जो प्रतिक्रिया है उसको हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर अकाउंट में डाला दिया गया। भौतिक प्रकृति है उसको अकाउंट में डाल देती है, वो हो गया अप्रारब्ध। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि किसी को क्रॉनिक रोग हो गया, यानी कि महारोग, आयुर्वेद में कहते हैं उसको महारोग। जैसे अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाओ, वो पहला टेस्ट करने के बाद कहेंगे ठीक है आपको महारोग नहीं है तो हम इसका कुछ इलाज कर पाएंगे, अगर महारोग हो गया तो कोई इलाज नहीं होता।